আসছিল মাধবাচার্যকে তিরোভাব, তিথি হ্যাঁ। তিরোভাব কা অর্থ হাম ক্যা সোচতে হ্যাঁ, শরীর কো ত্যাগ কর ভগবান কি মৃত্যু লড়া মে প্রবেশ কর গে, এই আমি সমুজতে হ্যাঁ। লেকিন মাধবাচার্য কি তিরোভাব এসা নেই হ্যাঁ, শরীর নেই ত্যাগে হ্যাঁ। অবশ্য আমার পঞ্চতত্ব মে জেসে আমি দেখতে এমনকি এসে তিরোভাব নেই কাহা যেত, লেকিন মাধবাচার্য কি তিরোভাব ভি যদি কোই কহতা হয় যে কি উড়ুপি মে ও লোক নারাজ হয়ে যাতে হ্যাঁ, ও নেই সোচতে কি উনকে আচার্য কি তিরোভাব হুয়া, মাধবাচার্য কি তিরোভাব নেই হুয়ে। অভি তক ও মানা যা কি আপনি গুরুজি ব্যাসদেবজি কি পাশ সাথ মে বদ্রিকা আশ্রম মে অভি ও আপনি শাস্ত্র চর্চা মে লগে হুয়ে, কিনকে সাথ ব্যাসদেবজি কে শিষ্য, ডাইরেক্ট ব্যাসদেবজি কে শিষ্য মানে যাতে হ্যাঁ। জেসে পরম্পরা মে ব্রহ্ম আমার যে ইয়ে গৌড়ীয় পরম্পরা ইয়ে ব্রহ্ম মধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় সে আতা হ্যাঁ, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে জ্ঞান ব্রহ্মাজি প্রাপ্ত কি পরম্পরা মে ব্রহ্মাজি কু তে নেই ব্রহ্ম হুদা আদি কবে ভগবান নে ব্রহ্মাজি কু হৃদয় সে জ্ঞান প্রদান কি, ব্রহ্মাজি নে ইসকু নারদজি কু ইসে জ্ঞান প্রদান কি, নারদজি নে ইসকু ব্যাসদেবজি কু প্রদান কি, আর ব্যাসদেবজি কে বাদ ডাইরেক্ট কোন মাধবাচার্য, ইয়ে আমার সম্প্রদায় মাধব সম্প্রদায় যো হ্যাঁ, বা ডাইরেক্ট ব্যাসদেবজি কে ডাইরেক্ট শিষ্য মানে যাতে মাধবাচার্য। আর মাধবাচার্য কে বাদ ফের অন্য সম্প্রদায় উসি সম্প্রদায় মে অন্য আচার্য আতে আতে ফের মাধবেন্দ্রপুরী আতে হ্যাঁ, মাধবেন্দ্রপুরী সে ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ছে গোস্বামী অবশ্যই উসি পরম্পরা মে আপ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ আর ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আর শিল প্রভুপাদ পরম্পরা ইয়ে কি আমরা ব্রহ্ম মাধ্য গৌড়ীয় পরম্পরা। এসলিয়ে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নে এই বহু সুন্দর কিতাব লেখা আছে লাইফ এন্ড টিচিংস অফ ফোর আচার্যস, বহু আচ্ছা পুস্তক হ্যাঁ, প্রামাণিক কিতাব হ্যাঁ। এসলে পদ্মপুরাণ মে কোট করতে হ্যাঁ, সম্প্রদায় বিহীনায় মন্ত্রস্তে নিষ্ফলা মতা অত কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ শ্রী ব্রহ্মা রুদ্র সনক বৈষ্ণব খিতি পাবনঃ। কিউকি মন্ত্র প্রামাণিক পরম্পরা সে হি স্বীকার করকে হি ইসকি ভজন কি জাতি বা জপ কিয়া জাতা হ্যাঁ, তো ইসি সে মন্ত্র কি ফল প্রাপ্ত হতা হ্যাঁ। আর ইসিলিয়ে কলিযুগ মে চার প্রামাণিক সম্প্রদায় কি মাধ্যম সে ভগবান বিষ্ণু কি ভক্তি কা প্রচার হোগা, চার সম্প্রদায় কোন না ব্রহ্মা রুদ্র সনক শ্রী ব্রহ্মা রুদ্র সনক বৈষ্ণব খ্যাতি পাবনা, সমগ্র পৃথিবী ধরাধাম কো পবিত্র করনে কে লিয়ে এ চার সম্প্রদায় কি বর্ণন পদ্মপুরাণ মে কি গই হ্যাঁ, শ্রী সম্প্রদায় রুদ্র সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্প্রদায় আর সনক যে কি কুমার সম্প্রদায়, চতুয়াস্তে কলৌ ভব্য উৎকলে পুরুষোত্তমাত, এ চার সম্প্রদায় সবই যাকর একত্রিত হোগে কাহা পর উৎকলে পুরুষোত্তমাত, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সে জগন্নাথপুরী মে একত্রিত হয়ে যায়গে হ্যাঁ। এসলিয়ে চৈতন্য চন্দ্রামৃত মে কাহা গে কি চার সম্প্রদায় মিলক হি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি সম্প্রদায়, কোন সা হ্যাঁ ব্রহ্ম মাধ্য সম্প্রদায় মে আয়ে, লেকিন এসকু কহতে কি গৌড়ীয় সম্প্রদায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভুধান সরস্বতী ঠাকুর আপনি চৈতন্য চন্দ্রামৃত মে লিখতে কি অন্ত মে কলিযুগ কে আর যে আর থোড়া সময় আয়েগা দশ হাজার এ চার কই সম্প্রদায় নেই রেগে একই সম্প্রদায় রহেগা ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি সম্প্রদায়, কই ভি মন্ত্র নেই রেগা একই মন্ত্র রহেগা, কোন সা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে, এ চার সম্প্রদায় একত্রিত হোগে যাকর পুরুষোত্তম ক্ষেত্র জগন্নাথপুরী মে, তো একত্রিত করলে বলে কোন হ্যাঁ স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হ্যাঁ। আর কে চার সম্প্রদায় কেসে না রামানুজম শ্রী শিকার্যে মাধবাচার্য চতুর্মুখ শ্রী বিষ্ণু স্বামী স্বামী নাম রুদ্রৈর নিম্বাদিত্য চতুর্সনঃ, তো এই চার সম্প্রদায় কে আচার্য এসেই হ্যাঁ, শ্রী সম্প্রদায় কে আচার্য রূপে রামানুজ আচার্য যিনি লক্ষ্মী নে স্বীকার করলিয়ে উনকো দিব্য জ্ঞান দেকর আপনি শিষ্য কে রূপে, মাধবাচার্য চতুর্মুখ মাধবাচার্য ব্রহ্মাজি কি সম্প্রদায় কো স্বীকার ব্রহ্মাজি নে ইনকো আপনি সম্প্রদায় মে বা ইয়ে ব্রহ্মাজি কি ধারা কো স্বীকার কি কোন মাধবাচার্য, ব্রহ্মাজি নে নারদ ব্যাস ফের মাধবাচার্য আগে বিষ্ণু স্বামী নে রুদ্রী রুদ্র সম্প্রদায় শঙ্করজি কি রুদ্র সম্প্রদায় সেই বিষ্ণু স্বামী আচার্য হ্যাঁ, निमादित्य चतुसनः, चार कुमार ने जिन्होंने हंसावतार से भगवान से भी ज्ञान प्राप्त किए थे, चारों कुमार ने निम्बादित्य के बाद निम्बार्क आचार्य को अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसी प्रकार ये चार प्रामाणिक संप्रदाय है, लेकिन ये चारों संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु इस संप्रदाय को स्वीकार किया। कौन स्वीकार किया इसको? चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार किए हैं, स्वयं राधा कृष्ण न है अन्य, दोनों के मिलित राधा कृष्ण के मिलित तनु व स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम जो गोविंद, उन्होंने स्वयं गौरांग के रूप में आकर माधवाचार्य जी के संप्रदाय को स्वीकार किए। नवदीप महात्म्य में व नवदीप भाव तरंग में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि माधवाचार्य ने भी गौरांग महाप्रभु को जाकर मिले थे। कौन सा स्थान पर? महतपुर। आप जो राम मामगाछी जाओगे मधुद्रुम दीप मामगाछी जहां वृंदावन दास ठाकुर के श्रीपाठ है, वहां से आगे जाने से आएगा बैकुंठपुर और महतपुर। जब आप आगे परिक्रमा बढ़ोगे तो महतपुर में पांच पांडव रहते थे और वहीं पर भी कहा जाता है कि माधवाचार्य ने भी गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए थे। बैकुंठपुर में रामानुजाचार्य दर्शन प्राप्त किए थे महाप्रभु के। महाप्रभु ने माधवाचार्य को दर्शन देकर कहे थे कि मैं तुम्हारी संप्रदाय में भविष्य में प्रकट हूंगा। स्वयं महाप्रभु प्रकट नहीं हुए लेकिन वो तो हमेशा वो तो नित्य धाम में रहते हैं, लेकिन प्रकट किया तो बात में उन्होंने प्रकट किए, लेकिन उन्होंने माधवाचार्य को दर्शन देकर कहा था कि आपके संप्रदाय को मैं भविष्य में स्वीकार करूंगा, तो ब्रह्म संप्रदाय। तो इसलिए माधवाचार्य जी इस संप्रदाय के आचार्य है, जिस संप्रदाय में हम लोग भी शामिल है। हम कहते हैं कि आपका संप्रदाय कौन सा? हम कहते हैं ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए यह संप्रदाय माधवाचार्य से आने के कारण हम भी इसी संप्रदाय के आचार्य के रूप में माधवाचार्य को ही मानते हैं। लेकिन जैसे आज तिरोभाव लिखा गया, ये तिरोभाव प्रकृत में माधवाचार्य की जो फलवार से वो नहीं स्वीकार करते कि उनके आचार्य के तिरोभाव हुई है उड़ुपी में, क्योंकि माधवाचार्य के जो तिरोभाव कैसे हुआ था ना, उन्होंने ऐसा ही भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर लिखते कि तैतरीय उपनिषद को ऐसे उपनिषद बैठकर व्याख्या करते थे, प्रवचन कर रहे थे उड़ुपी में। वहां पर आज भी वो अनंतेश्वर महादेवी के मंदिर है, वहां पर बैठकर जब प्रवचन कर रहे थे तभी शायद देवता लोग ने आ गए आकाश में, सब प्रकट हो गए, इंद्र चंद्र वरुण आदि सारे गंधर्व सब प्रकट होके आकर उनकी इतनी सुंदर व्याख्या को श्रवण करके उस इतनी प्रसन्न हुए कि उनके पर इतनी फूल बारिश की आकाश से, उस बाली फूल के अंदर ही वो कहां गए कोई देखा नहीं दोबारा उनको, और फूल के अंदर में फिर दोबारा देखे नहीं, सारे फूल को बाद में से लोग इधर उधर फेंके, लेकिन उस फूल के बीच में और माधवाचार्य मिले नहीं, वहीं से वो अंतर ध्यान हुए, वो शरीर नहीं त्यागे। इसलिए उनके संप्रदाय के जो आचार्य है आप भी वो भी रूप में हम स्वीकार करते हैं कि माधवाचार्य अभी तक कहां पर है? अपने गुरुदेव व्यासदेव जी के साथ में अभी भी ज्ञान चर्चा में शास्त्र चर्चा में वो रहते हैं, व्यासाश्रम में व्यासदेव जी के साथ रहते हैं। इसलिए जब हम तिरोभाव कहेंगे हम नहीं सोचना चाहिए कि तिरोभाव का अर्थ कोई दूसरे, जैसे हम दूसरे किसके तिरोभाव कहते तो शरीर त्याग कर नित्यालय में प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं। माधवाचार्य अभी भी जीवित माना जाते हैं, अभी भी उसी अपने शरीर में ही अभी भी अवस्थित है और उन्होंने व्यासदेव जी के साथ में शास्त्र चर्चा में लगे हुए हैं। समय आने पर कभी फिर दोबारा प्रकट हो सकते हैं, फिर दोबारा आकर फिर प्रचार कार्य में लग जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग महाप्रभु ने जो हमारा अचिंत भेदाभेद तत्व को स्थापना किए बा गौड़ीय फिलोसफी के रूप में, इन्होंने माधवाचार्य से दो चीज स्वीकार किया था। क्या क्या? माधवाचार्य दो चीज, चार संप्रदाय से दो दो चीज महाप्रभु सारंग स्वरूप में लेकर हमारे ब्रह्म माध्य गौड़ीय दर्शन को उपस्थापित किए। इन्होंने माधवाचार्य से दो चीज स्वीकार किए थे, श्री विग्रह की अर्चना, श्री कृष्ण विग्रह का अर्चना, जैसे माधवाचार्य ने इनको उड़ुपी में स्थापना किए थे श्री कृष्ण विग्रह, और मायावाद को कैसे परास्त करना, मायावाद को कैसे डिफीट करना है, ये सबसे श्रेष्ठ जो व्याख्या माधवाचार्य की है। इनके सामने मायावादी कोई खड़ा नहीं हो सकते, सारे आर्गुमेंट एक एक आर्गुमेंट मायावाद के कैसे खंडन करना है वो सीखना माधवाचार्य से। महाप्रभु ने रामानुजाचार्य से दो पाद को स्वीकार किए थे कि भक्ति जो होता है ज्ञान और कर्म से विहीन होता है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम ज्ञान कर्म से मुक्त भक्ति और वैष्णव की सेवा। वैष्णव की सेवा किए बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये सारे ये दो सिद्धांत महाप्रभु ने रामानुजाचार्य से स्वीकार किए। इन्होंने विष्णु स्वामी से महाप्रभु ने दो बात स्वीकार किया कि शरणागति के बिना भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शरणागति फुल सरेंडर, और विधि भक्ति सब कुछ नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, रागानुगत भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। अंत में निम्बार्क आचार्य जी महाप्रभु ने दो बात स्वीकार किए थे कि निम्बादित्य ने कहे कि यदि भगवान को प्राप्त करना है कृष्ण को, कृष्ण ही परम भगवान है, हैं? और राधारानी की कृपा के बिना कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। भगवान के जितने भी भक्त हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, राधा उनकी सर्वश्रेष्ठ उपासिका आराधिका है, और गोपियों की अनुगति वा अनुगत होना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। ब्रजवासियों की अनुगत होकर उनको प्राप्त करना पड़ेगा। ये दो सिद्धांत अंत में उन्होंने निम्बार्क में स्वीकार किए थे, निम्बार्क आचार्य से। तो इसलिए माधवाचार्य विशेष रूप में ये प्रतिष्ठित किया कि भगवान के व्यक्ति विशेष है, इसलिए श्री विग्रह की अर्चना को उन्होंने स्थापना किया। कृष्ण विग्रह को रूप में स्थापना करते हैं, श्री कृष्ण विग्रह को सबसे पहले इन्होंने विग्रह पूजा को स्थापना की, श्री कृष्ण विग्रह का पूजा अर्चन, इसलिए महाप्रभु इसको स्वीकार किए। तो आज उनके लाइफ की क्या इनकी तिर संक्षिप्त में उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो विशाल आचार्य जी की जो महिमा है विशाल है, लेकिन सारे सीमित समय में वर्णन करना संभव नहीं है। भक्ति सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि प्रकृति में ये बामनगिरी जो कि उडुपी क्षेत्र से लगभग दक्षिण पूर्व के 8 माइल दूर पर ये पहाड़ है बामनगिरी। उस बामनगिरी के चरण पर एक नदी बहती है, पापनाशिनी नदी, और उसी पर्वत पर परशुराम जो कि भगवान के शक्तिवेश अवतार व 10 अवतार से एक अवतार भी माने जाते हैं, तो उन्होंने विशेष रूप में 4 तीर्थ को स्थापना किया था। उसी पर्वत में उन्होंने भ्रमण करते हुए कुछ दिन तपस्या किए थे। परशुराम तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ, इस प्रकार 4 तीर्थ उन्होंने उस पर्वत पर स्थापना किए थे। पर चारों तो उसमें से पाजक क्षेत्र जो जिस गांव में माधवाचार्य की आविर्भाव हुआ था उसे कहते हैं पाजक क्षेत्र, ये धनुष क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरे नाम है इसके धनुष क्षेत्र भी है। इसलिए पवित्र पापनाशिनी नदी के किनारे गांव है, और माधवाचार्य को उनकी हमारा संप्रदाय में इनको कहते कि ये प्रकृति में मुख्य प्राण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? मुख्य प्राण या वायुदेव की, कोई कोई कहते कि नहीं वायुदेव के तीसरे अवतार है। वायुदेव पहले भी अवतार लेकर हनुमान के रूप में और भीम के रूप में अवतार लिए थे, तीसरी बार उन्होंने आए किस रूप में? माधवाचार्य के रूप में। जो संसार में मायावाद के विस्तार होने लगा, सर्वत्र भगवान की पूजन बंद हो गया, शिव विग्रह की अर्चना को सब लोग घोड़ा करने लगे, और निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति में ही सब ध्यान लगाने लगे, तभी भगवान स्वयं नारायण कहते कि भगवान स्वयं नारायण ने मुख्य प्राण वायुदेव को बुलाकर उनको कहे कि आप जाकर अवतार लेकर फिर धर्म को स्थापना करो, कि फिर इसको स्थापना करके पास मान लीजिए बा भगवान जो एक व्यक्ति विशेष के रूप में किस प्रकार लीलाओं को प्रकट करते अवतार लेते हैं आदि, भगवान की जो लीला नित्य है, भगवान भी नित्य है, ये सबको आप जाकर फिर प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने इनको भेजे। इसलिए माधवाचार्य ने आकर बा जो पादक क्षेत्र व उसी गांव जो कि उडुपी से 8 माइल्स दक्षिण पूर्व की दिख पर वो गांव है, वहीं पर उनके पिताजी थे माधव गह भट्ट और माताजी वेदवती, इनको आश्रय करके उन्होंने वहां जन्म लिए। लेकिन बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, बहुत हृष्ट पृष्ठ, और क्योंकि पहले से ही हनुमान और भीम के रूप में भी, भीम के मिलित अवतार कोई कहते, भीम और हनुमान के मिलित अवतार भाई, इनको कहते कि वायुदेव के तीसरे अवतार होने के कारण बड़े शक्तिशाली थे बचपन से ही। और इनके नाम पिताजी ने उनके नाम रखा वासुदेव, पहले बचपन का जो नाम उनके वासुदेव था। कई इनके जन्म का डेट के बारे में भिन्न भिन्न मत है, तीन चार अलग अलग मतामत देखा जाता है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको स्वीकार करते हैं, नारायण पंडित जिन्होंने माधव विजय श्री माधव विजय किताब लिखे हैं, माधवाचार्य के जीवन के ऊपर उनका ही शिष्य थे, उन्होंने लिखे कि 1238 में उनके आविर्भाव और 1317 ख्रीष्टाब्द में तिरुभाव, लगभग धरा पर उन्होंने 79 साल तक कोई लोग इनको देखे, उनकी बात में वो कहां गए कोई पता नहीं है, शरीर तो त्यागे नहीं, लेकिन इस धरा पर इतने 79 ईयर्स तक उन्होंने अपने भिन्न भिन्न लीलाओं को बा प्रकट किए हैं। तुलू ब्राह्मण फैमिली के फैमिली में ही माधोगे भट्ट थे, और ये पति पत्नी माधोगे भट्ट और उनकी पत्नी वेदवती बड़े चिंतित थे, उनके परिवार में कोई संतान नहीं थे, पहले दो संतान जन्म लेकर वो फिर इनकी मृत्यु हो गया था, इसलिए उन्होंने उडुपी क्षेत्र में आकर अनंतसर मंदिर में भगवान शंकर जी को जो शिवलिंग है, प्रकृत में शिवलिंग है लेकिन लोग ये इसको कहते कि नाम है अनंतेश्वर, अनंत अर्थात शंकरसन जी की मंदिर माना जाता है, विष्णु हरिहर दोनों का ही समावेश है, कई शिव मंदिर ऐसा ही है जिसमें हरिहर दोनों मिलित रहते हैं, जैसे लिंगराज है भुवनेश्वर में वो भी हरिहराय दोनों साथ में रहते हैं, चक्र त्रिशूल यहां पर भी इस प्रकार अनंत स्वर महादेव जो है हरिहर दोनों के बाद शंकरसन जी के अवतार माने जाते हैं, वहीं पर इसलिए इनको विष्णु मंत्र में भी पूजा की जाती है, दोनों तुलसी वहां भी चढ़ाया जाता है, बेलपत्र भी चढ़ाया जाता। इसलिए वहां पर कई साल 12 वर्ष लगभग उन्होंने घोर कठोर तपस्या और पूजन करने के प्रांत भगवान की कृपा से ही इनको ये पुत्र प्राप्त हुए, कौन माधवाचार्य माधव जिनको हम कहते माधवाचार्य, उनके नाम उन्होंने रखे वासुदेव। इनका दूसरे कई नाम है, संन्यास नाम है उनके, संन्यास लेने के बाद अनंत तीर्थ नाम उनके हो जाता, पूर्ण प्रज्ञ में इनको कहते, इन्होंने जो वेदांत सूत्र के ऊपर विशेष भाष्य लिखे उसको कहते पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ का अर्थात कंप्लीट नॉलेज, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, पूरे पूरे ज्ञान के साथ सारांश के रूप में इन्होंने अपने भाष्य जो श्री ने लिखे हैं पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, जैसे रामानुज आचार्य भाष्य को कहते श्री भाष्य, लेकिन माधवाचार्य की जो वेदांत सूत्र के और भाष्य सुखते पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो इस प्रकार माधवाचार्य जन्म लिए और उसी माता पिता माधोगे भट्ट और वेदवती को आश्रय करके ही पाद के क्षेत्र में, लेकिन आस्ते आस्ते वो अपने अति मानवीय जो कार्यकलाप को न प्रकट करने लगे, बचपन से ही इनके कई कहते कि वो जब छोटे बच्चे थे ऐसे लौटते लौटते कोई उनके चना का क्या हर्ष ग्राम क्या कहते चना को हर्ष ग्राम कहते घोड़ा दाना और कोई पैसे ले खा गए, लेकिन उसमें कोई बिगड़ा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा तो खा के उसको भी डाइजेशन कर दिया, जो बच्चा कभी ये छोटा बच्चा वो कभी उसको दांत में नहीं उठा उस समय, लेकिन उसी को कैसे भी ऐसे मिस्टेक में खा लिए तो फिर वो डाइजेशन कर लिए, उसको इनके सब डर गए क्या होगा उनकी, लेकिन इनके पिताजी ने इनको जब जन्म ले इनको लेकर आए थे अनंतेश्वर महादेव के पास में, फिर इनको समर्पण करने के लिए जिनकी कृपा से इनको प्राप्त किए अनंतेश्वर मंदिर में, आने के रास्ते में बहुत बड़े माने जंगल घोर जंगल, उसमें शेर सिंह से हिंस जंतु रहते थे, बड़े भयभीत स्थान है, लेकिन भयभीत होता आते थे, लेकिन अपने पुत्र को सिर पर ऐसा ही जैसे वसुदेव ने कृष्ण को लेकर जा रहे थे, वो लेकर आए मंदिर तक, रास्ते में देख रहे सब सिंह बाघ सब आ रहे चारों साइड में, लोग जब इनको देखते देखते अपने आप वो अपने रास्ता छोड़कर भाग जाते थे, तो वो समझ गए कि ये स्थिति केवल इस दिव्य शिशु के कारण जिसको उन्होंने सिर में धारण करके चलते हैं उनके प्रभाव से जीव जंतु हिंस जंतु सब भाग जाते इधर उधर, बहुत सुंदर अपने निरापद से उन्होंने मंदिर तक आए और अपने पुत्र को भगवान के चरण में समर्पण किए कि आपकी कृपा से प्राप्त किया है और आप कृपा कीजिए जैसे जैसे आपका ही प्रचार ये सारा दुनिया में कर सके। जब उन्होंने सिर्फ 2-3 साल के बच्चे थे, उनके पिताजी जो माधोगे भट्ट थे, उन्होंने कहीं किसी बड़े व्यवसायी से कई पैसा कर्जा लेते फैमिली चलाने के लिए कर्जा लिए थे, और वो जो जो सेठ जी आकर बार बार फटकरता था, तुमको मेरा पैसा नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हो, पैसा क्यों नहीं, बार बार आके जानता था उनके पिताजी को, और बोला दादा तुम नहीं तो जमीन का कागज दो, काम कुछ भी दो, पैसा नहीं दे रहे तुम, बहुत डांट रहा था लेकिन तुम्हारे घर बार सब मैं लोग मैंने नीलाम कर लूंगा, ऐसा डांटता था आके। तो एक दिन ये बच्चे थोड़ा छोटे बच्चे खेल रहे थे, डेढ़ दो साल ऐसे में, तो इसको देखिए पिता डांट रहा, तो जो वो सेठ जी वापस आ रहा था उसे बोला तू क्यों डांट रहा है मेरे पाप को, क्या तुम चाहिए, क्या चाहिए, तो बोला तुम्हारा बाप पैसा नहीं देता है, लेकिन इनके प्रभाव देखकर इतने गुलगालिया बच्चे बड़ा हृष्ट पुष्ट तो प्रभावित तो हुआ, कह के तुम्हारा क्या क्या चाहिए ले, तुम्हारा कपड़ा देखा देता हूं, वह इमली का बीज से पड़ा हुआ था, वो हाथ में ले लिया इमली का बीज, बोला ले उस कपड़े में डाल दिए, लेकिन वो केवल बच्चे को देखे इतने प्रभावित हो गया तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उस कपड़ा लेकर चला गया ऐसे ही, जाकर उसमें देख रहा था तो क्या था, सोने के मोहर था, उसका जितना पैसा उसके उसके डबल उसको मिल गया। बाप में माधवते पिताजी माधवे भट्ट बहुत प्रयास करके यही से धन इकाठी करके फिर गए उसको कर्जा चुकाने के लिए उसके पास, तो बोला कर्जा तो तुम्हारा पिता तुम्हारा लड़का मुझे दे चुका है, उस दिन आपको डांट के आ रहा था तो वो मुझे फटकार, बोला दोबारा डांटना नहीं मेरे पिताजी, क्या चाहिए तुझे ले ले, वो इमली का बीज मेरे कपड़ा में डाल दिया था, आके देख रहा हूं तो कि सोने की मोहर ही था। तो इसलिए बचपन से ये सब मैंने अति मानव जो अद्भुत घटनाएं उन्होंने प्रकट करने लगे। इनके गांव के पास में जंगल में एक सर्प रहता था, उसके कहते कि वो राक्षस था, द्वापर युग से उसका नाम था मणिमान, उसके पांच ऐसा ही हुड था वो सांप के, और कई सब खा जाता था, कोई बच्चे को खा लेता था, कोई गाय को, कोई भी कोई जीव जंतु भय से जंगल में नहीं जाते थे। तो लेकिन एक बार माधवा जी वहां गए, छोटे बच्चे थे 3 साल 4 साल के, उसको मना कर दे जंगल में मजे वो सुने नहीं, लेकिन सांप आया था, खबर के लिए अंगूठा अपने अंगूठा के उसके सिर के ही दाब के उसको मार दिए, क्योंकि भीम के अवतार है वो, जैसे वो सांप को मार डाले उस राक्षस को बंद कर दिए 3-4 साल उम्र में। खेलने के लिए उन्होंने कभी कभी उस जो विमानगिरी पर्वत का पास में जाते थे, जो कि अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर 2 माइल 2-3 किलोमीटर दूर में बच्चों के साथ खेलते थे। कभी कभी उनकी माताजी जब बुलाते थे खाने के लिए क्या कुछ काम के लिए, तो माताजी व्याकुल हो जाते थे, लादा कहाँ गई, ढूंढते थे कहाँ चले गई, बट मैंने भयभीत हो जाते थे, एक छलांग में वहां पर आके अपने सीधे आकाश में कूद के पड़ते, अपने माँ के सामने कूद के आ जाते थे, देखकर लोग आश्चर्य हो जाते थे। इसलिए क्योंकि पहले से जन्म से ही ज्योतिष भी बताया था कि ये अतिमानवीय बच्चा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, और ये देखकर आश्चर्य होता था कि इतने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से कैसे एक छलांग में आकर माँ के सामने हाजिर हो जाते थे। एक साल उम्र में उन्होंने अपने बहुत बड़े संत था उन गांव में, खेलते खेलते संत उसके शब्द है तो उसका पुछ को पकड़ लिए, पकड़ लेते सिंध तो वो तो पूरा भयभीत भागने लगा सिंध संत, और ये पुछ को पकड़ के खड़े रहे सिंध, वो संत कई जंगल के अंदर पर्वत पहाड़ इतने सारा भागते रहे भय से, और ये पुछ को पकड़ के रहे ऐसे झूल रहे पुछ को और हंस रहे, कई घंटे तक घूमते घूमते माता पिता भयभीत हो गए, लेकिन बाद में फिर वो घूमते घूमते इधर पहुंचा, देखे कि सब लोग उसका पुछ को पकड़ के है, एक साल के बच्चे लेकिन कई वो थक गया, तो दो भागते भागते बैल थक गया, फिर लाकर पहुंचा, फिर वो आराम से वहां से निकल, लेकिन कई शरीर में कहीं भी उनके क्षत विक्षत कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार कई अद्भुत घटनाएं बचपन से ही उन्होंने प्रमाणित किया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपने नाम के अर्थ स्वयं लिखते महाभारत जय के उन्होंने जो एक किताब लिखे हैं तात्पर्य महाभारत तात्पर्य निर्णय, तो उन्होंने कहते कि प्रकृत में उनके नाम माध्वाचार्य बाय माधव शब्द का अर्थ किया, कहते मधु का अर्थ हैप्पीनेस जो सुख, भक्ति ठाकुर ने इसका अर्थ इस प्रकार लिखे हैं कि मधु का अर्थ जो खुश है, बो का अर्थ है नॉलेज, इसलिए माधव शब्द का अर्थ है जो ब्लिसफुल नॉलेज बा इस प्रकार ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से सब समय व्यक्ति आनंद और आनंद में ही रह सकता, वो जिस ज्ञान को माधवाचार्य ने प्रदान किया उस ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति हमेशा दिव्य आनंद व उस नित्य आनंद आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उनका नाम माधव है। और उन्होंने 8 साल उम्र में उनको जनेऊ, उनके माता जी पिताजी इनको उपवित संस्कार किए, इनको जनेऊ दिए और टीचर के पास पढ़ाने के लिए भेजे, किस ग्रामर सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए से भेजे। लेकिन वो कोई पढ़ाई में मन नहीं देते थे, जाते थे तो सब समय कुश्ती कसरत करना, एक्सरसाइज करना, फाइटिंग करना, इसमें लगा रहते थे, इधर जम करना। वो टीचर बड़ा तंक में आ गए, क्या है बच्चा कभी पढ़ता, पढ़ने का कोई मैंने कोई भी इच्छा नहीं है, सब समय क्लास चलता है, लेकिन इनकी क्लास में बैठना नहीं, बच्चों के साथ इधर उधर किसी बच्चे को खींच लिए, किसको एक बात बहुत तगड़े थे, मैंने बहुत हेल्दी थे। तो टीचर ने एक बार बोलाकर डांटा, बोले क्या कर रहे तुम, क्यों आया, घर जाओ, फिर पढ़ने के लिए आए कि तुम इधर आज के सब समय खेल कूद में लगे रहते हो, एक्सरसाइज करना, जंपिंग करना, ये करना, ये क्या है। तो बोला आपको क्या चाहिए, पूछिए आप, जो शास्त्र पूछना, मैं पढ़ने आया ना, मैं सब। तो उसका टीचर ने जितने जो कुछ पूछा सारे व्याकरण सारे बता दिए, और टीचर भी जो आंसर दे रहा था उसमें क्या गलती है उसको भी बताने लगे। टीचर कह रहा ये तो क्या, तो सब डर गए, बोले समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बच्चे मैंने अपने टीचर का भी एक बार उन जा रहे थे, उनकी माता जी के साथ में एक जगह कथा चल रहा था, पंडित जी बैठकर कथा कह रहे थे कि पुरानी की कहानी कहते थे, उसमें त्रुटि करते थे। ये बच्चा बोला कि रुको रुको, झूठ तुम कह रहे हो, गलत बोल रहे हो, छोटा बच्चा बोल रहा है ऐसे, 3 साल की बच्चा क्या है, स्टेज में ले गए। तो बोला कि ये कहानी ऐसा नहीं है, पंडित जी यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, ये कहानी ऐसा ही है पूरा करेक्ट। पंडित जी भी देखकर आश्चर्य हो गए, वो अपने टीचर को भी करेक्ट करता था, अपने पिताजी भी कोई कोई कहानी कहते थे, छोटा बच्चा का सोचकर उसको कहानी कहते थे इधर से उधर, तो कहानी में कहा क्या गलत बोलते हैं, रामायण की कहानी हो, जब महाभारत की कहानी हो, जो गलत बोलते थे वो उनको करेक्ट कराते थे, उनके पिताजी को भी करेक्ट कराते थे, टीचर को भी करेक्ट करते थे बचपन से ही। तो इसलिए बचपन से ही वो जो है कि आप महान आचार्य बनेंगे उसकी परिचय दिए, सारे ज्ञान पहले से उनके हृदय में था, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, वो पहले से ही सब कुछ जानते, जैसे कुछ पढ़ा नहीं, चप्पन 8 साल उम्र में गुरुकुल में गए और ऐसे 4 साल के अंदर में सब कुछ उन्होंने वेद वेदांत तत्व सब कुछ पढ़ के बड़े पंडित बन गए। उनको कोई युक्ति तर्क में परास्त कर नहीं कर सकते, टीचर लोग कहे कि ऐसा हो गया पढ़ाई, हम इसको कुछ नहीं पढ़ा सकते, सब कुछ हमसे भी ज्यादा है तो ये जानता है, हम इसको क्या पढ़ाएंगे, अपने आप उसके ज्ञान उसके आपको प्राप्त हो रहा है, अल्फाबेट इसको सीखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लिख रहा है, सिखाने की जरूरत नहीं उसको, वो अपने आप सब जानता है, ग्रामर का सूत्र सब कुछ प्रकट हो रहा है उससे। तो इसलिए टीचर लोग कहे कि स्टडी खत्म हो गया, 12 साल उम्र में सारे वेद वेदांत पढ़ के पूरा पारंगम हो गए, पंडित हो गए, और कोई भी युक्ति तर्क में उनके पास में आता था सब परास्त होकर चले जाते थे, कोई उनके पास आता नहीं था। तो उन्होंने एक दिन 12 साल उम्र में आए, पिताजी के सामने कहे कि देखो एक डंडा हाथ में पकड़ के लिए, डंडा पकड़ के आए, कहे पिताजी अभी मैं संन्यास लेकर पूरा दुनिया में भ्रमण करके ये मायावादियों मायावाद को परास्त मायावाद को परास्त करके मैं वैष्णव सिद्धांत को उपस्थापना करूंगा, मुझे अनुमति दे दो, आपके पिताजी इसलिए अनुमति मांग रहा हूं, अभी मैं संन्यास लेना है, संन्यास ले लिया, संन्यास लेके जाऊंगा, जा रहा हूं मैं वो क्या अच्युत प्रख्या के पास, तो उनके पास मैं संन्यास लेकर बस मैं प्रचार में। लेकिन पिताजी डर गए, बोले तो हंसने लगे, बोले कि तुम बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, शंकराचार्य की मायावाद तो पूरा दुनिया में व्याप्त है सर्वत्र, और तुम जाके मायावाद का क्या बिगाड़ सकता है, तुम क्या प्रचार कर उनको बिगाड़ देगा, सारे दुनिया उसकी विश्वास करता है, इतने बड़े बड़े महान पंडित लोग है, तुम क्या जानते हो, तुम तो ऐसे ही जैसे सूखा कोई सूखा लकड़ी को जमीन में गाड़ देने से जैसे फल फूल वृक्ष में हरा भरा हो जाएगा, सूखा लकड़ी भी वृक्ष में परिणत होकर फल हर भर फड़ा फल और फूल प्रदान करेगा, ऐसे ही कहानी असंभव को संभव करना चाहता है। तो बोला आप विश्वास कर लोगे, मेरे हाथ में जो सूखा डंडा मैं पकड़ा हूं, सूखे लकड़ी का डंडा, और इसको मैं गाढ़ा देकर यदि वृक्ष के इसमें यदि फिर वृक्ष उत्पन्न होगा और फल फूल में हरा हरा हो जाएगा, आपको विश्वास आ जाएगा ना, ये कहकर उस सूखे दंड को ऐसा ही जमीन में गाढ़ा दिए, और कुछ ऐसे मंत्र पर इसका कुछ उच्चारण करिए थोड़ा सा देखिए, तुरंत ही वो विशाल वृक्ष में परिणत हो गया, बटवृक्ष में, अभी भी उनके जन्म थे जन्मस्थान है क्षेत्र में बटवृक्ष अभी भी है, वो सूखे लकड़ी को ऐसे ही गाढ़ा दे दिए, वो वृक्ष में विशाल वट वृक्ष हो कि तू हरा बराबर उसमें से बट का फल आ गया, फूल सब आ गया, तो इसको देखकर पिताजी ने डर के बोले ये तो कुछ है विशेष व्यक्ति है, लेकिन बड़ा भयभीत हुए कि घरवार छोड़ के भाग जाएगा, ये घरवार छोड़ना एक ही लड़का है, भयभीत हो रहा तो इसलिए वो नहीं है, उनको शादी कराने के लिए प्रयास करने लगे। इसको देखकर उन्होंने कहे कि शादी वादी मैं नहीं करने वाला हूं, आपको यदि चाहते कि घर में एक लड़का हो तो फिर आपको और एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कहते कि इसलिए माधवाचार्य ऐसा किए तो फिर उनके घर और दूसरे पुत्र इनके घर में जन्म हुआ छोटे भाई, कहे कि अभी तुम्हारा पुत्र मिल गया घर में, अभी मुझे रुकना नहीं, किंतु आचरण कर रहे थे कि पिता माता कोई उल्लंघन न करें। दूसरे भाई जब उनके घर में आए बाद दूसरे संतान आ गए, त्याग दिए घर, पिताजी को कहने का कुछ 12 साल उम्र में संन्यास ले लिए। शंकराचार्य ने कितने साल में संन्यास लेते, 8 साल में है? इसलिए 12 साल में माधवाचार्य संन्यास लेकर घर से निकल गए, जाकर अपने गुरु जी जो अच्युत प्रख्य उनके गुरु थे, जो अच्युत प्रख्य के पास में उनके आश्रम में जाकर उनसे संन्यास ले लिए। और संन्यास लेने के बाद उनके नाम हो गया विष्णु तीर्थ या माधवाचार्य के रूप में प्रसिद्ध लाभ करने लगे। और इसके बाद जब उन्होंने अपने गुरुजी के साथ में कई बार अच्युत प्रख्या ने भी इनकी स्कॉलरशिप इनके ज्ञान को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते थे, कभी कभी चुक्ति तर्क करते थे, गुरु से भी ज्यादा नॉलेज किसके पास में होता था, शिष्य के पास में। लेकिन अच्युत प्रख्या तो ऐसा ही मायावाद सिद्धांत को बाहर से स्वीकार करके रखे थे, लेकिन अंतकरण में वो डेटी विग्रह आदि डेटी विग्रहों को सेवा करते थे, वैष्णव भी थे, लेकिन पूरे मायावाद सिद्धांत को भी छोड़े नहीं थे, थोड़ा मायावादी सिद्धांत भी मिलावट था उनके सिद्धांत में। लेकिन माधवाचार्य तो संपूर्ण रूप में मायावाद को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, तो इसलिए अपने गुरुजी के साथ में कई युक्ति तर्क होता था, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी ठीक है, कुछ समय तक मैं प्रचार में भी जाना चाहता हूं। गुरुजी ने उनका आदेश दिया, तब उन्होंने बाहर निकले प्रचार में, अपने सिद्धांत को जो कुछ सिद्धांत उन्होंने स्थापना करना चाहते थे दैत्यवाद, तो उन्होंने कई बड़े बड़े तार्किकों को जो तो उस समय भारत में बड़े प्रसिद्धि लाभ किए थे, वासुदेव और एक मायावादी जैसे ही बादी सिंह, बुद्धि सागर, और उस समय के जो शंकराचार्य थे सिंगरी मठ के शंकराचार्य थे, ये सभी उनके साथ में युक्ति तर्क आर्गुमेंट करने के लिए आए, लेकिन सभी उनसे युक्ति तर्क परास्त होकर वापस जाते थे। तो आस्ते आस्ते इनकी ख्याति बढ़ने लगा, किनके, माधवाचार्य की ख्याति बढ़ने लगा, मायावादी लोगों ने बहुत डर गए, बोले कि ये व्यक्ति को कैसे भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा हमारा मायावाद को उखाड़ के फेंक देगा हम सब है। उस समय सारा संसार में शंकराचार्य की बड़ा प्रसिद्धि था, जनरल पब्लिक शंकराचार्य को बड़े भगवान शंकर के अवतार जानते थे, इसलिए बहुत सम्मान करते थे, लेकिन माधवाचार्य आकर इनको सब उखाड़ने लगे, इनके सब मैंने ख्याति को बिगाड़ने लगे। तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाया, इनका जो ग्रंथ है इनको सब क्या करेंगे, इनको सब जल कैसे जिस शास्त्र पढ़कर सब पकड़ के वैष्णव सिद्धांत स्थापना करते हैं, इनको स्टीलिंग का उनसे छीन लेना, चुरा कर ले लेंगे और इसको जला देंगे, नष्ट कर देंगे, बस गए। वो कहां से आर्गुमेंट बोलेगा इतना, एक बार ऐसा ही किए उन्होंने सब छीन छान के ले गए, उन्होंने रात्रि में चोरी करके सब ग्रंथ ग्रंथ ले गए, लेकिन बाद में उसे वहां पर लोकल जो राजा थे तो उन्होंने बड़े दुखी माने माधवाचार्य ने भगवान फिर स्मरण किए, तो एक राजा ने ये मायावादियों से फिर उनको अपने सैनिकों को बैठाकर इनको सब ग्रंथ को उद्धार करके फिर माधवाचार्य को वापस दे दी थी। इसी प्रकार उन्होंने दिग्विजय करते करते आश्रम के मार्ग पर चले, कहे कि मैं जाकर व्यासदेव जी को, उनकी इच्छा था कि बद्रिका आश्रम में जाकर नरनारायण ऋषि और व्यासदेव जी को मिलना, इसलिए उन्होंने व्यासदेव जो गए हिमालय में पहुंचे, दो बार उन्होंने हिमालय के मार्ग में बद्रिकाश्रम गए थे। पहला यात्रा में उन्होंने कई शिष्यों के साथ में लेकर उन्होंने बद्रिकाश्रम के नरनारायण ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर जब पहुंचकर अपने पवित्र उधर पर जाकर बहुत तपस्या करने लगे, वहां जो मंदा के जैसे अभी भी बोला अलकानंदा बहती है, उन्होंने वो तप्त कुंड में स्नान नहीं करते थे, गर्म पानी के कुंड में, उन्होंने प्रत्येक दिन नियमित जाकर वो श्री अलकानंद में स्नान करके ही कठोर तपस्या करने लगे। प्रत्येक दिन वेदों की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा शिष्यों के साथ में करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हठात देखे कि सभी शिष्यों के साथ में बैठकर प्रवचन कर रहे थे, एक विशेष ज्योति स्वरूप कुछ ऐसे आकाश में आकर उनके मुख में प्रवेश कर गया। तभी उन्होंने थोड़ा सा समाधि से जैसे उनको हुआ शरीर में, कुछ समय के बाद में माधागर जब देखते उठते हैं तो देखते कि वो किसी नया स्थान पर है, अर्थात व्यासदेव जी ने इनको अपने नित्य जो उपार बद्री जहां पर ये चर्मचक्की में व्यासदेव जी का आश्रम अभी भी है, लेकिन हाँ मैं इसको देख नहीं सकते, तो माधवाचार्य जी को कृपा करके व्यासदेव जी ने अपने आश्रम में ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने व्यासदेव जी के साथ साक्षात्कार हो करके ही वह कहा जो भगवदगीता के ऊपर उन्होंने स्वयं टीका लिखे, कौन माधवाचार्य टीका लिखे थे, उनको दिखा है उसमें सिग्नेचर किए व्यासदेव जी ने, व्यासदेव जी ने इनको अपने डायरेक्ट शिष्य के रूप में स्वीकार किया, किनको, माधवाचार्य जी को, और अपने आसन माने जितने बड़े बड़े मुनि ऋषि सब व्यासदेव जी के साथ में बैठे हुए थे, हैं व्यासदेव जी के जो सब शिष्य थे मैत्रेय मुनि आदि सब जितने सब बड़े बड़े शिष्य सबके सामने साथ में इनको भी बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन दिया गया, किनको, माधवाचार्य जी को। इसीलिए माधवाचार्य जी को तब से व्यासदेव जी को प्रसन्न करके उनके शिष्य डायरेक्ट शिष्य बनने के कारण ये संप्रदाय उन्हीं से माधवाचार्य माने व्यासदेव जी के डायरेक्ट शिष्य के रूप में फिर माधवाचार्य माने जाते, यदि वो अच्युत प्रख्या से तथा कथित गुरु लौकिक दृष्टि से दीक्षा लिए थे लेकिन वो मायावाद संस्कार में थे, इसलिए हम अच्युत प्रख्या को परंपरा में नहीं डालते हैं, डायरेक्ट व्यासदेव से माधवाचार्य, माधवाचार्य शिष्य ने व्यासदेव शिष्य रूप में माने जाते हैं। वापस आने के टाइम में उन्होंने कई मायावादियों को परास्त किया, शोभन भट्ट, स्वामी शास्त्री, कोई ये सब प्रसिद्ध मायावादी प्रचारक थे और उनकी ख्याति पूरा भारत में व्याप्त था। ये सब मायावादियों को मार्ग पर परास्त करते हुए युक्ति तर्क शास्त्र अर्थ में फिर उडुपी में वापस आए। उडुपी में वापस आने के बाद इनकी एक विशेष घटना, किस प्रकार उन्होंने उडुपी कृष्ण को स्थापना की, उडुपी में जो कृष्ण विग्रह है प्रसिद्ध विग्रह है शिव, जैसे महाप्रभु ने एक उनसे स्वीकार किया कि विग्रहों को पूजन करना, तो उन्होंने समुद्र किनारे में जाकर उडुपी में कुछ दूरी पर समुद्र है 2-3 किलोमीटर दूर में, वहां जाकर समुद्र किनारे में बैठकर अपने स्नान करने जाते थे, वहां बैठकर कुछ अपने ध्यान कुछ भगवान के नाम जप करते थे, तो देख रहे थे कि दूरी में एक जहाज फंस गया, किसमें, समुद्र की बालू में फंसा हुआ है, निकाल नहीं पा रहा है, कितनी भी प्रयास करके वो जहाज वाला जो मालिक है कि इसको माने जहाज को निकाल नहीं पा रहा, तभी माधवाचार्य जी को थोड़ा दया हुआ, उन्होंने वहीं बैठकर किनारे पर कुछ ऐसा ही इंगित किया, ऐसा ही जहाज को निकाले कुछ ऐसे ही मंत्र ऐसे हाथ को इंगित करते ही वो जहाज अपने आप निकल गया, केवल इनकी इंगित से ऐसा कुछ है, क्योंकि कुछ जैसे कोई जादू कोई जानता है ऐसा हाथ घुमा बस निकल गया, तो वो मालिक बड़ा प्रसन्न हो गया, आया उनके पास में कहा कि आप तो महा हजारों लोग इसको धक्का लगा के नहीं निकाल पाते, मैं कोई कोई जगह में लगाते माधवाचार्य स्वयं जाकर हाथ में एक ही हाथ में धक्का लगा के लेफ्ट हाथ में निकाल दिया इसको, बोले सो हटो, हजारों लोग उस जहाज को निकाल नहीं पाते, फंस गया था, लेकिन ये गए अकेले ही सबको हटा दिया और अकेले ही धक्का मार के निकाल दिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगते कि नहीं, वो वहीं पर किनारे पर बैठकर ऐसे कुछ हाथ ऐसे घुमा ऐसे कुछ विनय किए जैसे जहाज अपने आप निकाल गए, तो मालिक बड़ा खुश होकर आकर कुछ देना चाहता था कुछ भेंट, तो कहना क्या भेंट करें बाबा, मैं तो बाबा हूं, चलो तुम्हारे जहाज में क्या है, कई प्रकार सामान था, वो उसमें गोपी चंदन भी था, कह वो गोपी चंदन दे दो, तो बहुत बड़ा गोपी चंदन के ढेर उन्होंने उठा के दिया, एक बहुत बड़ा था, माधवाचार्य जी उसको लेके जब उनके घर तक लेके आए तो वो अपने आप वो फट गया, उसके बीच में क्या निकले, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह निकले जो कि आज उडुपी में स्थापित की गई है माधवाचार्य जी के द्वारा। कहा जाता कि ये जो विग्रह को 30 लोग उठा के नहीं ले आ पाते थे, माधवाचार्य जी ने आसाम से अपने कान में अकेले ही रखकर ले आए, वहां जब मिला इनको वो चंदन तो उनको बोले कि विग्रह इसको लेके चलो, 30 लोग इसको उठाकर अपने लाने में समर्थ नहीं होते, लेकिन माधवाचार्य जी अकेले अपने कान में रखे और आ गए, और जो गोपी चंदन के बीच में विग्रह कृष्ण विग्रह मिले तो उनको पास में वो तलाव, आज भी उडुपी मंदिर के पास में तलाव है बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान माना, तीर्थ जल माना जाता, उसी जल में विग्रहों को पूरा स्नान करके स्वयं स्नान कराकर पूरे चंदन को नहीं गोपी चंदन को इनके शरीर से निकाल के इनको फिर माधवाचार्य ने उस विग्रह श्री कृष्ण विग्रह की स्थापना करके 8 ब्रह्मचारी शिष्य उनके थे उनको संन्यास दिए और उनको पूजा सेवा का अधिकार दे दिए हैं। तो इनमें से 8 सन्यासी जो ब्रह्मचारी थे, उनके ही ब्रह्मचारी शिष्य थे, उनमें चुनकर 8 को सन्यास दिए। विष्णु तीर्थ जो कि उनके भाई के स्वयं अपना छोटा भाई थे, ऋषिकेश तीर्थ, नरहरि तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ, बामन तीर्थ, राम तीर्थ और अधोकेश तीर्थ, इस प्रकार 8 लोगों को संन्यास देकर उन्होंने कहे कि आप लोग ये श्री कृष्ण विग्रह का जो पूजा अर्चन करते रहना, 2 साल तक एक एक शिष्य का अधिकार है। आज भी वो 8 मुख्य मठ उन्होंने स्थापना किया, आज भी है वो परंपरा। वो मुख्य 8 मठ है और उसके जो महंत, तो एक मठ को अधिकार 2 साल तक रहता, माने किनका, भगवान उडुपी कृष्ण बाल कृष्ण की सेवा पूजा का। वो कृष्ण कार्य प्रकृत में इनको भगवान ने स्वयं स्थापना किए थे द्वारका में, और इनको गोपी लोग ने पूजा करते थे। कोई कहते कि गोपी तलाव से ही, क्योंकि चंदन के साथ आए मारे गोपी तलाव से ही उठे, तो गोपी लोग ने इनको पूजन करते थे। कोई कई जगह पर कहते हैं अर्जुन ने इनको प्रतिष्ठा किया था, वो गोपी तलाव के किनारे अर्जुन ने इनको प्रतिष्ठा किया था। गोपी लोग ने सेवा करते थे, और बाद में जब सभी लीला समाप्त हो गया तो विग्रह वहीं थे, तो इसलिए फिर दोबारा आए। आज भी ये विग्रहों को जब सुबह जगाते हैं तो गोपी गीत गाया जाता है। किनको, ये उडुपी कृष्ण को जो सुबह जगाते हैं प्रातः समय मंगलारती के पहले जो गोपी गीत गाते हैं, गोपी गीत सुनकर फिर जगते हैं भगवान है। तो भगवान जगन्नाथ किसको सुन के जगते हैं, गीत गोविंद श्रवण करके जगते हैं। ये जो उडुपी कृष्ण है जिनको माधवाचार्य ने स्थापना की, गोपी गीत सुनकर जगते हैं। और क्योंकि कहते हैं विग्रह प्रकृत में ऐसे बाल कृष्ण मूर्ति है, एक हाथ में खुआ दंड दधि मंथन करने का दंड, और दूसरे में रस्सी पकड़े हुए, रस्सी एक में खुआ दंड एक में बाल कृष्ण के रूप में। तो उसी को नकल करके हमारे बैंगलोर का कृष्ण भी जो कृष्ण बलराम बने हैं उसमें भी ऐसे कृष्ण को पकड़ा है ऐसे खुआ दंड और रस्सी। तो बाल कृष्ण की विग्रह उन्हें स्थापना किया, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की स्थापना करके फिर वो कई प्रकार के माने बड़े प्रसिद्ध है आसपास से, प्राय दक्षिण भारत में सर्वत्र उनकी ख्याति व्याप्त होने लगा। मायावादी लोग ने इनसे भय से छुपने लगे, उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर पाते, कोई युक्ति तर्क नहीं कर, सब बड़े भयभीत थे हैं। तो मैंने इसी अवस्था में फिर सोचे कि मैं दोबारा चलता हूं मेरे गुरु जी को, फिर और कुछ शास्त्र लिखकर उनको फिर टेस्ट मनाए, गुरु जी से सिग्नेचर लेने के लिए फिर गए। बहुत किताब लिखकर जा रहे, दूसरी बार जो जा रहे थे बद्रिका टोर में, तो उन्होंने अपने छोटा भाई को भी साथ में लेके गए थे, व्यास तीर्थ जो विष्णु तीर्थ जो कि छोटे भाई थे, और उनसे ही संन्यास लिए थे। रास्ते में जब महाराष्ट्र के बीच में आया तो एक महाराष्ट्र के जो वहां लोकल राजा था, वो एक तालाब खुदाई कर रहा था। क्या करता, जो लोग आते थे जो भी रास्ते में जाते थे उनको फोर्सफुली बोलता था खुदाई करो, कार्य में लगाता था तालाब खुदाई करने में। तो माधवाचार्य जी गए तो इनका अपने फलवार से इनको भी बोला कि यहाँ काम करना पड़ेगा, पब्लिक सबके लिए तालाब खुदाई किया जा रहा है, जो भी मार्ग पर जाएगा यहाँ पर कुछ दिन रह के माटी खुदाई करेगा इधर। तो माधवाचार्य ने देखे कि बोले कि हमको तो कैसे खुदाई करना आता नहीं है, तो आप थोड़ा दिखाओ। तो राजा ने स्वयं दिखाने लगा, ऐसा ही मैजिक जैसे हो गया कि वो इसको बंद नहीं कर पाया, वो खुदाई करते रहा, बस निकल गए। और कोई जाए पर कहा था कि थोड़े दिन ये लोग का इनका फलवार करते थे, लेकिन बाद में माधवाचार्य ने उसको राजा को बुलाकर फिर राजा को ये काम में लगा कर ये लोग भग के आके। तो जो भी है मेरे पास में से कोई दैवी शक्ति था तो राजा को लगा दिए, जो बोल रहा था कि इनको खुदाई करने लगाना, तो राजा को खुदाई करते रहा, ये भाग गए। तो रास्ते में जाते जाते और एक मुसलमान के राज्य आया, हिंदू राजा था, पर बीच में एक नदी के दूसरे साइड में मुसलमान के राज्य था। हिंदू राजा और मुस्लिम राजा में बहुत संघर्ष चलता था, फाइटिंग चलता था, इसलिए कोई इस नदी को क्रॉस करके दूसरे साइड में जाता था मुसलमान लोग इसको मार डालते थे, भय से कोई मुसलमान मैंने इस साइड से दूसरे साइड जाता नहीं था। लेकिन माधवाचार्य उसे क्या नहीं किए, बोले शिष्य के साथ में चले गए क्रॉस करके, नदी को क्रॉस करके दूसरे साइड गए तो मुसलमान सब आ गए घेरने, उसको घेरने मैंने कुछ इधर उधर बोलने लगे, तो वो सीधे राजा के पास में गए। माधवाचार्य राजा के पास में जाकर इनके अद्भुत शक्ति सामर्थ्य और रूप सौंदर्य देखकर और इतने सुंदर उसको बोले कि मेरा उद्देश्य क्या है, किस लिए मैं दिग्विजय मैंने चल रहा हूं, मैं कोई तुम्हारा राज्य में धन लूटने नहीं आया हूं। तो इनको इतने आध्यात्मिक दृष्टि से इतने सुंदर प्रवचन दिए, वो मुस्लिम जो बादशाह था वो भी प्रभावित हो गया, वो कहा कि महाराज अभी आप कहीं मत जाइए, मेरे राज्य में रहिए, मैं राज्य का आधा आपको दे देता हूं। लेकिन मुरादा तो उसके दान स्वीकार नहीं किए लेकिन आगे चल दिए। मैंने इतनी प्रभावी साथ है कि मुसलमान को भी प्रभावित करते थे, कितने निष्पक्ष व्यक्ति को भी। से आगे चलते चलते कई डकैत लोग भी रास्ते में इनको अटैक किया, वो अकेले ही वो 20-25 डकैत को अकेले ही भगा दिए। रास्ते में जाते जाते बद्रिकाश आश्रम के रास्ते हिमालय के जंगल में उनकी जो विष्णु तीर्थ थे वो पकड़ लिया, शेर पकड़ लिया था। तो देखे कि शेर पकड़ ये गए, शेर को एक थप्पड़ लगा के भगा दिया, एक थप्पड़ में भाग के रोड़ के भाग गया कौन शेर। मैंने तो आप समझो कितनी ताकत मैंने माधवाचार्य पर की होगा। मैंने अपने जीवन काल में सब प्रमाणित किए, केरल के मार्ग पर जाते थे तो वहां उनके लोग ने टेस्ट करने के लिए एक हजार केला दे दिए, लगभग 1000 केला एक साथ रख दिए, एक साथ एक सब खा दिए। और दूसरी जगह पर 10,000 केला रखे और 30 बड़े बड़े पात्र में दूध, सारे केला और सारे दूध एक साथ समाप्त। हनुमान की प्रमाणित किया कि मैं हनुमान हूं। मैं कौन हूं, पूर्व जन्म में क्या है। शिष्यों के साथ में आते थे, आए थे हस्तिनापुर में, शिष्य लोग ने पूछे कि आप यदि मैंने वो स्वयं कहे कि मैं भीम का अवतार हूं, भीम और हनुमान की मिलित अवतार हूं, तो बोले आप भीम है तो आपका जो महाभारत युद्ध में जो गदा यूज किए थे वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जाओ इस जगह बता दिए, वहां खुदाई करो। वहां थोड़ा सा खुदाई करते ही विशाल गदा निकला है। तो उन्होंने प्रमाणित किया कि जिस गदा वाले गदा के साथ उन्होंने युद्ध किया था, किसके साथ, दुर्योधन को मारा था, उस गदा को देखा है शिष्य लोग ने, उस गदा को प्राप्त करके अभी कहीं रखा हुआ म्यूजियम में उनकी है। तो इसलिए उन्होंने प्रमाण किया कि मैं कौन हूं। लेकिन केवल भगवान के निर्देशन में ही उन्होंने अवतीर्ण होकर इस लघु प्रकट किए। दोबारा उन्हें व्यासदेव जी को जो मिले, व्यासदेव ने उनको 8 सालग्राम दिए, सालग्राम शिला उनको उनसे प्राप्त किए। महाभारत के तात्पर्य निर्णय जो ग्रंथ को व्यासदेव को देखे, बड़े बड़े प्रश्न कर अपने अनुमोदन के रूप में उसके सिग्नेचर किए। आस्ते रास्ते में आस्ते आस्ते फिर पद्म तीर्थ पुंडरी काख्यपुरी कई मायावादी लोग ने उनके साथ में झगड़ने आ गए, लेकिन सबको युक्ति तर्क आर्गुमेंट से परास्त किए। विशेष रूप में एक व्यक्ति था त्रिविक्रम आचार्य, जो कि मायावादियों में तत्कालीन मायावादी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ लीडर माना जाता था, तो उनको भी युक्ति तर्क में कई एक महीने तक डेली डिबेट होते रहा माधवाचार्य से। अंत में परास्त होकर फिर माधवाचार्य के चरण में शिष्य तो स्वीकार किया है। तो माधवाचार्य उसको दीक्षा देकर उसके नाम रखे नारायण आचार्य, जिन्होंने बाद में माधवाचार्य की जीवन के ऊपर किताब लिखा है माधव विजय लिखे। ये त्रिविक्रम आचार्य जो बड़े बहुत बड़े मायावादी लीडर थे, तो उन्होंने भी बाद में उनके शिष्य बन गए। एक नास्तिक व्यक्ति था, कहीं इधर गोमती नदी के किनारे रहता था, ये ब्राज आता, वो कभी विश्वास नहीं करता वेद की मंत्र फंत्र को, बोला क्या मंत्र है, मंत्र उच्चारण के कोई वैल्यू होता है, हाँ कुछ दिखाओ मंत्र उच्चारण करके, यदि कुछ दिखाओगे मंत्र का प्रभाव तो वहां में स्वीकार करेंगे, हम नहीं मानते कुछ मंत्र फंत्र, हाँ जी प्रचार किया फालतू तो प्रचार कर रहे, चलो यहां से। व्यास ने कोई बोले कि मंत्र का प्रभाव यदि देखोगे तो प्रचार करने दोगे मुझे, बोला हाँ। तो उन्होंने केवल या औषधि पूर्व जाता है आदि जो वैदिक मंत्र को ऐसे उच्चारण करके, तो एक मुठ्ठी सस्य पकड़े हाथ में और इसमें जमीन में फेंक दी, मंत्र उच्चारण करके फेंक दी, तुरंत ही उधर क्या होने लगा, सो वो अंकुरित होकर सब वृक्ष उगने लगे। वो राजा देखते देखते बड़े हो गए और उसमें फूल फल सब आ गया मंत्र की बल से, बल देखो मंत्र का बल है कि नहीं। तो राजा ने भी बड़ा प्रभावित होकर फिर उनके शिष्य को स्वीकार किया है। कई कहानियां उनके बने जीवनी में लिखा हुआ ग्रीन कुछ जो बीज को खाली ऐसे फेंक कर उसमें से वृक्ष उत्पन्न करा दिए। एक बार अंधार में था, वो उसका पढ़ाई कर रहे थे, अंधार हो गया लाइट नहीं है, शिष्य लोग सो पढ़ाई करने बड़े दुखी हो गए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपने नाखून को ऐसे रखा सामने और नाखून से ही क्या निकलने लगा लाइट, जैसे टर्च में नाखून से ही ऐसे बहुत बड़े ज्योति निकालकर पूरा आकाश को नहीं आसपास में जहां सब पढ़ाई करते थे वो आलोकित कर दिया। सो मैजिशियन जैसे लेकिन ये सो सत्य घटना है, कोई झूठा नहीं कि हम कोई ऐसे लिखा, लेकिन ये जीवन में ऐसे ही उन्होंने देखा है, नाक से नाखून से ही ऐसे ही आलोक को प्रकट किया। एक जगह पर जा रहे थे कि नदी का बाढ़ का पानी भर रहा था गांव में, बहुत बड़ा उसको बंद करने के लिए वो लोग बहुत बड़ा पत्थर उठाकर डालना चाहते थे, जो कि कम से कम 100 आदमी उठा नहीं सकते पत्थर को, लेकिन सब प्रयास कर रहे थे। बोले क्या करा, क्या चाहिए, मैं आप कुछ मदद कर सकता हूँ, नहीं पत्थर को उठा के यहाँ डालना है। बहुत आसान से एक हाथ में उठाया पत्थर को लाकर वहां डाल दिए, वहां जाके रख दिए। कहते कि आज भी वो पत्थर को लोग देखने जाते हैं, इसको कहते कि भीमन कुलू परिचय देख, मैं भीम हूं। जैसे वहां पर भीम पुल है ना, उधर देखोगे कहां जहां जाओगे सरस्वती नदी जहां पर निकलती है, भीम पुल है उधर बद्रिकाश्रम पास में जाते लोग, वहां एक पत्थर को पुल बना दिया भीम नदी के ऊपर। तो इस प्रकार ये भी दक्षिण भारत में ऐसी एक जगह है जहां पर माधवाचार्य ने एक पत्थर उठाकर पूरा बंद कर दिए रास्ता को, माने पानी का जो बाढ़ का आता था पानी बंद कर दिए, पत्थर आज भी वहां पर है। एक बार बारिश नहीं हो रहा था, कई लोग से मैंने तलाब फला सूख गया, गाय को पानी फानी मिलता नहीं था, लोग बड़ा हाहाकार होने लगे। एक बार उन्होंने देखे आकाश को, सही आकाश को देखकर कुछ मंत्रोच्चारण, तुरंत ही बादल आ गया और बारिश बहुत जोर से होने लगा। अभी साइंटिस्ट लोग कुछ पाउडर फेंकना चाहते हैं करते हैं, लेकिन वो तुरंत ये सब अति मानवीय का माने जो शक्ति को प्रकट किए। थोड़े से प्रसाद उन्होंने लेंगे, आप हजार लोग ऐसे बैठे हुए खाने के लिए लाइन में, एक ही बकेट प्रसाद लेकर आप सभी को खिला देंगे, पूरे पेट भरा, आपका पेट खाली नहीं रहेगा, वो सर्विस करते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा, बकेट फुल रहता है। इस अद्भुत जो इनके चरित्र में अति मानवीय गुण है, और वो अकेले तो कम से कम 30-35 लोग का अकेले खा सकते थे, जैसे कहा कि ये तो हजारों केला और 30 लगभग 30 पात्र में मिल्क, मैंने 30 लीटर से ज्यादा 40-50 लीटर दूध और एक मैंने हजारों केला एक साथ खा सकते हैं। इसी प्रकार कई अति मानवीय गुण को उन्होंने प्रकट किया। समय भी हो गया, इनके टीचिंग्स जो है विशाल टीचिंग, लेकिन संक्षेप में कहते कि इनके टीचिंग्स इस प्रकार, इसके माने जो सारांश के रूप में लिया गया कि भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कहते कि श्रीमन माधव मते हरि परतरह सत्यम जगत तत्वतः, हरि परतर अर्थात भगवान हरि जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, ये व्यक्ति विशेष है जो सुप्रीम ट्रुथ, और विष्णु ही समस्त ज्ञान के उत्स है और वही पूजनीय है। कौन? भगवान विष्णु। ये भौतिक जगत जो है ये रियल है, ये मायावाद कहते कि झूठ है जगत, मिथ्या, माधवाचार्य इसको खंडन किए, जगत मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, सत्य से परम सत्य से जो उद्भूत हुआ वो भी सत्य है, हैं? तो इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड इज रियल। दो माधवाचार्य का फोटो देखो कि हमेशा दो ऐसा हाथ देखा, अर्थात एक नहीं, मायावादी कहते कि एक ही है आत्मा परमात्मा एक सेम हो, सबसे कहते नहीं दो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों भेद है, लिविंग एंटिटीज आर सेपरेट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, दोनों लिविंग एंटिटी और भगवान दोनों सेपरेट है, और कहेंगे लिविंग एंटिटीज आर इटरनल सर्वेंट ऑफ विष्णु, जो लिविंग एंटिटी है जीव है, भगवान विष्णु की ही नित्य दास है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये माधवाचार्य ने प्रतिष्ठित किया। दो तो प्रकार के जीव संसार में दिखाई पड़ते, समग्र सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, एक है नित्य, एक है मुक्त जीव और दूसरे बद्ध जीव, और निवारसन का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में सेवा प्राप्त करना, वह सेवा करना, निर्विशेष मुक्ति को उन्होंने खंडन किया, कहे कि नहीं वैष्णव सिद्धांत में इसको हम स्वीकार नहीं करते, किसको, साजोज्य मुक्ति को खंडन किए, कहे कि मुक्ति का अर्थ वैष्णव सिद्धांत में है कि भगवान के चरण में दासत्व को प्राप्त करना, उनकी सेवा करना। एक बद्ध जीव कैसे संसार से मुक्त हो सकता है, ना केवल भगवान हरि और भगवान विष्णु की ही चरणारविंद को सेवा करके ही, नवदा भक्ति को स्वीकार करके उनके चरण सेवा करके ही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, नवदा भक्ति को स्वीकार करके उनकी सेवा करके ही वो मुक्त हो, जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो सकता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण, ये तीनों ही प्रमाण का उत्स है। इनमें से शब्द प्रमाण ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार माधवाचार्य ने ये वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया और जिस सिद्धांत के माध्यम से मायावाद को संपूर्ण रूप में खंडन किया जा सकता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनके सिद्धांत को स्वीकार किया। संक्षिप्त में यहां पर भक्तिवान सरस्वती ठाकुर लिखे कि श्रीमन माधव मते हरि परतर सत्यम जगत तत्वतः भिन्ना जीवगणा हरेर अनुचरा नीच उच्च भावम गतः मुक्तिर नैज सुखानुभूतिर अमला भक्ति च तत् साधनम ही आख्यादि अखिल आमनाय एक वैद्य हरि। सा ज्ञान की जो है यही लक्ष्य है कि भगवान हरि को समझना। लेकिन इनके जो लक्ष्य है कि माधवाचार्य के सिद्धांत में मुक्ति प्राप्त करना, साधु जी को छोड़कर दूसरा जो दूसरी मुक्ति है कौन सा, सारूप्य सामीप्य सालोक्य षष्ठी, चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना इनके अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हमारे सिद्धांत में एक महाप्रभु ने और थोड़ा क्रॉस कर लिया इसको, कहेगी ये नहीं, इसके आगे भी है प्रेम अपमार्थ महान। लेकिन भगवान के चरण में प्रेम प्राप्ति करना है जीवन का लक्ष्य। लेकिन चारों वैष्णव आचार्य जो अन्य आचार्य जो मुक्ति को ही शिव का रामानुज जाते हुए मुक्ति को ही जीवन का लक्ष्य कहते हैं। माधवाचार्य जी कहते हैं कि जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो जाना यही जीवन का लक्ष्य है। महाप्रभु ने थोड़ा आगे और कहे कि दियम आनंद न गुणंती, देने पर भी वैष्णव लोग ये चार प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान चरणारविंद में प्रेम को प्राप्त करना इनके लक्ष्य होता है। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने माधवाचार्य से दो सिद्धांत को स्वीकार किया है, शिव ग्रहण की अर्चना, भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और उनके शिव ग्रहण की अर्चना करना प्रत्येक जीव का धर्म है, और दूसरा मायावाद को कैसे परास्त करना, ये सारे सिद्धांत जो जीव जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी है ये सारे माधव सिद्धांत का है। माधवाचार्य के सिद्धांत के आधार पर जीव नित्य दास है भगवान के, नित्य सेवक है। इसी प्रकार माधवाचार्य हमारे संप्रदाय के ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं और इनकी डिटेल चर्चा करना तो बहुत कई दिनों तक चलते रहेगा। लेकिन संक्षेप में इनके बारे में कहा गया, ये चारों आचार्य में से बहुत शक्तिशाली थे, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटली भी, और काल फिर दूसरे आचार्य के तिरुभाव है, कौन, रामानुज आचार्य, माधवाचार्य, इसलिए मुख्य प्राण वायुदेव के ही अवतार माने जाते हैं, जो कि पहले उन्होंने भी हनुमान और भीम के रूप में ये अवतरित हुए थे, भगवान की लड़ाई में भाग लिए थे, और इस कलयुग में उन्होंने इसी रूप में माधवाचार्य के रूप में आए ये माना जाता है। और उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, ये जैसे आज के ये बसंत पंचमी के बाद ये आज के कौन सा नवमी तिथि में शरीर मैंने अंतर्ध्यान हुए, केवल अंतर्ध्यान हुए माघ शुक्ल नवमी तिथि में, केवल अमन लोकलोचन में उनके शरीर केवल को शरीर को छुपा ले बस, लेकिन अभी तक वो जीवित है कि उनके शरीर नहीं त्यागे, इसलिए उनकी समाधि नहीं है। जैसे अन्य आचार्य की समाधि है, रामानंद आचार्य की समाधि है श्रीरंगम में, तो इनकी समाधि नहीं है, किनके, माधवाचार्य की। इन्होंने इनके संप्रदाय के इसलिए फॉलोअर्स अभी तक मानते हैं कि उन्होंने अभी तक जीवित है, उसी शरीर में है और अपने गुरु जी के साथ में है। चर्चा भक्ति ठाकुर ने लिखे कि प्रकृत में ये वयस्वत मनंतर के अंत तक ये सही छुपे रहेंगे। जिस प्रकार अन्य अमर गण भी व्यासदेव है, बली, विभीषण, कई लोगों के नाम से वशस्थमा आदि, ये भी अभी तक जीवित है लेकिन मनाई उनके शरीर को प्रकट नहीं किए, शरीर कहीं ना कहीं रहते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार ही माधवाचार्य भी भक्तिवान सरस्वती ठाकुर अपने कमेंट्री जो किताब लिखे कमेंट्री लिखते कि वो अभी तक वो वैवस्वत मनंतर के अंत तक ऐसा ही वो रहेंगे, उसकी बात में फिर प्रचार में आ सकते हैं व अन्य किसी लड़ा में भगवान की लड़ा में फिर भाग लेंगे। ठीक है, श्रील माधवाचार्य की, श्रील माधवाचार्य तिरुभाव तिथि, तिरुभाव कैसे कहेंगे भाई, श्री माधवाचार्य की जाए, तिरुभाव नहीं हुआ अभी तक तो वो है, शरीर नहीं त्यागे। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद के।